ये आकाशवाणी है। अब आप शक्ति प्रताप सिंह से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से 1,70,00,000 किसानों को लाभ होगा।
100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सबको कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एनटीपीसी के अधिकारों में वृद्धि करते हुए उसे वर्तमान दिशा निर्देशों से छूट देने को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि अब एनटीपीसी अपनी सहयोगी इकाई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निवेश कर सकेगी।
एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है, अभी इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के लिए 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया गया है और इसमें रिस्ट्रक्चरिंग भी है एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स एनएलसी में ऑलरेडी हैं उनको एक सब्सिडरी में ले जाके फिर एक फोकस्ड वे में एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के लिए भी एक फोकस्ड सब्सिडरी बने और 10 गीगावाट एनर्जी का इसमें टारगेट रखा गया है।
श्री वैष्णव ने बताया कि भारत ने हरित ऊर्जा क्षमता में 50% का लक्ष्य पार कर लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना का प्रस्ताव पारित किया है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की सराहना करता है जिनके अथक प्रयासों से ये उपलब्धि संभव हो पाई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि पिछले 11 वर्षों में वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 81,00,000 टन हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में फलों सब्जियों का वार्षिक उत्पादन बढ़कर 75,00,000 टन और दूध का उत्पादन बढ़कर 102,00,000 टन हो गया है।
प्रधानमंत्री धनधान कृषि योजना को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कृषि क्रांति पिछले 11 सालों में हुई है और हमारा उत्पादन खाद्यान्न के 40% से ज्यादा बढ़ा है। न केवल खाद्यान्न का, फलों का, सब्जियों का, दूध का उत्पादन ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है।
संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आह्वान करेगी। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। जापान के तोक्यो में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रमुख जापानी कंपनियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की और इंडिया ट्रेंड फेयर का शुभारंभ किया। ये मेला भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए जापानी खरीदारों से सीधे जुड़ने के सबसे बड़े मंच के रूप में एक है और इससे द्विपक्षीय कपड़ा व्यापार और मजबूत होने की उम्मीद है। भाजपा ने अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या प्रवासियों से मुक्त मतदाता सूची की अपनी मांग तेज कर दी है। पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तक विरोध मार्च का नेतृत्व किया और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर मतदाता सूची में रोहिंग्याओं का नाम शामिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के पूर्णिया में एक परिवार के 5 सदस्यों को जादू टोना करने के संदेह में जिंदा जलाकर मार दिए जाने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को जम्मू कश्मीर में तैनाती के लिए 20,000 से ज्यादा जवानों को शामिल करते हुए 20 नई बटालियन बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। शुरुआत में CRPF ने 35 बटालियनों के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन पहलगांव आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंत्रालय ने तत्काल उपाय के तौर पर 20 बटालियनों की मंजूरी दे दी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 40वें ओवर में 4 विकेट पर 181 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।